अपेक्षा से शुभ योग से पुण्य का और अशुभ योग से पाप का श्रय होता है, ये यहाँ पर इस सूत्र में व्याख्यायित किया गया है। वरना दस में गुण स्थान तक पाप और पुण्य दोनों प्रकृतियों का आश्रय होता रहता है, वो हमारे शुभ अशुभ दोनों भावों के द्वारा होता है, अशुभ भावों के द्वारा भी। लेकिन क्या स्थिति बनेगी, अशुभ भावों के समय स्थिति अनुभाग जो पाप प्रकृतियां हैं उनमें बहुत अधिक डलेगा और पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग बहुत कम होगा। सो जैसे कि पुण्य तो बंधा नहीं बंधा बराबर ही है, पाप ही बंधा, तो अशुभ योग है अगर तो पाप के बंध का कारण हो गया, ऐसा अपने कहने में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रय है, इसके कहने का आश्रय उनकी प्रधानता की अपेक्षा से है। कैसे आश्रय होता है, स कसाया कसायो सांप्राय क्रियापथो, वह जो आश्रय है तो वो दो प्रकार का होता, अपन को होता है कषाय पूर्वक और ग्यारहवें बारहवें तेरहवें गुण स्थान में जो जीव विराजते हैं उनके कषाय से रहित अवस्था में भी आश्रय होता है। सो कषाय से या संप्राय से युक्त जो आश्रय है उसे सांप्रायिक आश्रय कहते हैं, और जो कषाय से रहित आश्रय होता रहता है मन वचन काय योग के माध्यम से, जो एक समय के लिए बिना स्थिति अनुभाग के या एक समय की स्थिति और अनुभाग पड़ने पर सिर्फ उनमें पड़ती है, ऐसे जो कर्मों का आश्रय होता है वो ईर्ष्यापथ आश्रय कहता है कहलाता है। कर्म आए आश्रित हुए और एक समय का स्थिति अनुभाग है, सो अगले क्षण निर्जरित हो गए, इस तरह से ये ईर्ष्यापथ आश्रय ग्यारहवें बारहवें तेरहवें गुण स्थान में होता है। अपन को तो कषायवान है इसलिए कषाय से सहित सांप्रायिक आश्रय ही होता रहता है। वह सांप्रायिक आश्रय किसने प्रकार से होता है, तो इंद्री कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस् भेदा, जो सांप्रायिक आश्रय है वो इंद्रियों के माध्यम से कषाय के माध्यम से असंयम या कि अव्रत के माध्यम से और 25 जो क्रियाएं हैं उन सब के द्वारा आश्रय सांप्रायिक होता रहता है, शुभ का भी और अशुभ का भी। देखें अपन सबसे अपन परिचित हैं, पांच इंद्रियां हैं, चार कषायें हैं, अव्रत कितने हैं, पाप से विरक्त होना ही व्रत है और अपन पाप से विरक्त नहीं है तो अविरत दशा है, सो पांच पाप होते हैं, इस प्रकार से अव्रत की बात हो गई। लेकिन क्रियाएं जो 25 हैं उन 25 क्रियाओं के बारे में अपन को थोड़ी सी जानकारी रखना चाहिए, अपनी अज्ञानता बस ऐसी क्रियाएं कर लेते हैं जिनसे कि अपन को अशुभ भी आश्रय हो जाता है। जैसे कि सम्यक्त क्रिया, जो जिनालय हैं गुरुजन हैं और जिनवाणी हैं उसकी पूजा रूप जो सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया है वह सम्यक्त क्रिया कहलाती, इसको सम्यक्त वर्धनी क्रिया भी कहते हैं। हमारे भीतर जो श्रद्धान है उसको बढ़ाने का कारण यह क्रिया करती है, पूजा पाठ इत्यादि जो अपन करते हैं वह भी अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करने में, उसे बढ़ाने में, उसे निर्मल बनाने में निमित्त अपन बनावे तो बन सकता है, इस तरह ये सम्यक्त क्रिया है। लेकिन वीतरागी भगवान के अलावा चाहे जिसको अपन पूजते हैं तो उस समय काहे का आश्रय होता, ये मिथ्यात्व क्रिया है, निरंतर मेरे अंदर मिथ्यात्व बंध को प्राप्त होता रहता, अशुभ का आश्रय हो जाता है, क्योंकि मेरी अज्ञानतावश मैं देव गुरु शास्त्र का सच्चा स्वरूप न जान करके और रागी बेशी को ही देव गुरु शास्त्र मानकर उनकी आराधना कर रहा हूं, इससे तो मेरा मिथ्यात्व ही बढ़ेगा, उसका ही पोषण होगा और अपनी देखा देखी दूसरा कोई व्यक्ति होगा तो उसका भी मिथ्यात्व का पोषण देख करके कि देखो जी तो कर रहे हैं तो अपन को का दिक्कत है, अपन भी करो, तो इस तरह से देखा देखी भी अपन निमित्त बन जाते हैं दूसरे के मिथ्यात्व के बढ़ाने में। सावधानी आवश्यक है। प्रयोग क्रिया है, जाने आने में होने वाली जो शरीर की प्रवृत्ति है वह सब प्रयोग क्रिया है, निरंतर आश्रव होता रहता है। अब सावधानी अपन को रखने हैं कि जाने आने में किस तरह का भाव अपने भीतर है, सो इस क्रिया से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का आश्रव होगा। समाधान क्रिया वो कहलाती है कि जिसमें हम लिए गए व्रत नियम संयम की उपेक्षा करते हैं और असंयम भाव की तरफ अपना ज्यादा झुकाव रहता है, तब फिर इससे भी कर्म का आश्रव होता है। और सावधानी पूर्वक अगर अपन चलते हैं तो वो ईर्ष्यापथ क्रिया कहलाती। सो सावधानी पूर्वक तो दो प्रकार से चला जाता है, हमें कांटो न लग जाए, हमारा पैर खराब इस चीज पे न पड़ जावे, हमारा पैर गड्ढे में न गिर जावे। सो देखभाल के चल रहे सावधानी से काय के लाने, अपने संसार के बचाने के लिए। और अगर भाव भी आ जावे कि चलते समय ऐसी सावधानी रखना है कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव ने मर जावे, तो वही शुभ के आश्रय में निमित्त बन जाएगी ईर्या पथ जो क्रिया है सावधानी पूर्वक। यहां पर अगर अपन सावधानी पूर्वक का अर्थ दया भाव ही लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शुभ के ही आश्रय में कारण बनेगा। प्रादोष की क्रिया कहलाती है कि जब अपन गुस्से में आकर के कोई क्रिया करते हैं, बहुत समय करते हैं गुस्से में आकर के, हैं झुंझला करके कर लेते हैं कि हाँ ठीक है कर लेते हैं हम, सो उठा पटक अपनी जो भी जैसे बनेगी सो कर दे, सामान ही फेंक देते कहो गुस्सा में, तो ये सब पाप का आश्रय होगा अवश्य। उसी समय कोई से पूछने नहीं पर पाप के आश्रय को कि इनसे पूछ लो होने के नहीं होने, वो तो उसी क्षण आपने किया, अगले क्षण भले ही आप हाथ जोड़ लो माफी मांग लो, मगर वो तो उस समय जो हो गया हो गया, उसके बाद उसमें रद्द बदल आप कर सकते हैं लेकिन उसको मेट नहीं सकते, उसका फल तो हमें भोगने के लिए तैयार ही रहना पड़ेगा। काय की क्रिया कहलाती है पाप भाव से युक्त होकर के कार्य करना, जिसमें कि पांचों पाप मालूम है कि अवश्य ही होंगे, हिंसा तो होगी ही, झूठ तो हो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन क्रिया कर रहे हैं इन सब पापों से युक्त भावों से युक्त हो करके अपन काय करते हैं। आधिकरण की क्रिया कहलाती है हिंसक उपकरणों को ग्रहण करने की क्रिया, अपने आत्मरक्षा के लाने बंदूक खरीदी सो अलग बात, लेकिन आश्रय होगा क्योंकि आपने हिंसा का उपकरण रखा है, आप भले ही सावधानी से उसका उपयोग करेंगे सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, लेकिन दूसरे के परिणामों को संकलेश होगा कि भैया डरो मारने देवेंगे अपन को। और अगर दूसरे के हाथ में वह हिंसक उपकरण लग गया तो वो तो उसके द्वारा हिंसा में ही प्रवृत्त हो सकता है, तो हिंसक उपकरण ग्रहण करने की जो क्रिया है वह भी आश्रय का ही कारण होती है। और प्राणियों को पीड़ा देने वाली क्रिया पारिताप की क्रिया कहलाती है, ऐसी भी अपन करते रहते हैं जानबूझ करके कि हुई ये दुख सुहोन दो कछु नहीं है, और अपन अपनी तो सुख सुविधा के लाने साधन जुटाते ही रहते हैं, वैसी क्रियाएं करते ही रहते हैं। और प्राणातिपात की क्रिया प्राणों का वियोग करने वाली ही क्रिया, मालूम है कि इसमें तो जीव मर ही जाएंगे, बचने की संभावना ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपन भीतर में जानते हुए भी और उस क्रिया को कर रहे हैं तो वो क्रिया प्राणातिपात की क्रिया कहलाएगी। दर्शन क्रिया रमणीय रूप देखने का अभिप्राय, चलो सीन सीन जी देखे आवे, बाजार घूमे आवे, झांकी लगी है सो भी देखे आवे, ये भैया जितने प्रकार से रमणीय वस्तुएं हैं उन सबको देखने का जो भाव है वो तो सब दर्शन क्रिया है, आश्रय का कारण है, देखने योग्य तो वीतराग रूप है, सो उसके द्वारा ही भगवान जिनेन्द्र के दर्शन करने से ही शुभ का आश्रय होगा, बाकी तो सब संसार को देखने से अपने भीतर राग द्वेष ही उत्पन्न होगा, सो निरंतर आश्रय ही होगा। स्पर्श करने की जो भावना है जो स्पर्श करने योग्य वस्तु है उसको स्पर्श करने की प्रवृत्ति, छूके तो देख ले कैसी है, अच्छी बहुत नरम सी है, हैं? ऐसा भाव आ जाता। कितनी गर्म है, हाथ डाल के देखें, अच्छी ठंडी भी है, हाँ जी बहुत अच्छी है, जी लगा दो हमारे पे, बहुत गर्म लग रहा है, ठंडो लगा दो, कछू हवा कर दो महाराज जी को, बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा हूं। हे भैया, स्पर्श में सुख मान लिया, शीत स्पर्श है चाहे उष्ण स्पर्श है, शीत स्पर्श मेरे लिए अच्छा है, ऐसा भाव आ गया तो आप आश्रव से बच नहीं सकते। सो निरंतर ऐसा स्पर्श जनित अपन आश्रव करते ही रहते हैं। एक बार की घटना है, उस समय तो हम छुटनक अवस्था में थे, सनसी की बात है, किसी व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा फूल, केवड़ा का फूल कहलाता था, वो जानते नहीं थे, वो आचार्य सी के समक्ष उन्होंने समर्पित किया, मुक्तागिरी की बात है। सुबह सुंदर लग रहा था वो फूल, हमने कहा थोड़ा, जब आचार्य श्री के पास रखा हुआ है तो उनके पास बैठे और अरे बहुत अच्छा फूल चढ़ाया, जैसे ही उस तरफ हाथ बढ़ा करके उसको छूने की और पलटने की थोड़ी भी प्रवृत्ति करने की इच्छा हुई, आचार्य श्री ने कहा ठहरो, क्या करते हो? उसके आश्रित बहुत सारे तृष्टजीव होंगे, तुम्हारे शरीर के उष्णता को वो सहन नहीं कर पाएंगे और मरण को प्राप्त हो जाएंगे, उस सबका पाप तुम्हारे मत्थे आएगा, स्पर्श मत करो। भले ही स्पर्श करने योग्य वस्तु है लेकिन उसके आश्रित जो भी जीव हैं उन सब का विघात होगा, सो आश्रव अपने लिए ही होगा। अपने शरीर में भी अगर किसी अंग विशेष में खुजली हो रही है, वहां पर जोर से खुजा दिया, उस स्किन के आश्रित जितनी भी राशि थी उसका मरण हो गया, शाम को प्रतिक्रमण करो। आमा से परिमा से अगर मैंने थोड़े से किसी हाथ के या पैर के भाग को स्पर्श किया हो, उसे खुजलाया हो, या कि पूरे शरीर पर ही हाथ फेरा हो, आमा से परिमा से, तो वह भी मेरा दोष मिथ्या हो, उसे भी दोष माना है, क्यों? आश्रव का वह भी कारण बनेगा। ऐसी स्पर्शन क्रिया है, प्रात्यय की क्रिया, इंद्री विलास के नए नए साधन इजाद करना। अब तो आजकल जमाना ही इसका है कि आप मंजन भी करो तो कौन से प्रकार को लो, अब मंजन की ठेकड़ों वैरायटी, और आदमी लोल लुप हो जाता है कि जा चीज फलानो मंजन करके देख लो, अरे भैया दतौन उठाई और घिस लाई, उसमें अल्प आरंभ था और अल्प राग था, लेकिन अब बहुत अधिक आसक्त हो करके अपन इन सब इंद्रिय विषयों की नए नए साधनों का उपयोग करके और कर्म का बंधन निरंतर करते रहते, ऐसे अट्रैक्टिव पाउच बनाएंगे उन चीजों का, भले ही सर्प हो गए, धूल को कपड़ा, धूल को पाउडर, मानो उसको इतने बढ़िया पाउच में धरेंगे, इतने खरीदने हो तो खरीद ले, ये आकर्षण ही है कि नहीं? प्रात्यय की क्रिया जिसके माध्यम से आश्रय होता है ऐसी ही है भैया। और समंतानुपात क्रिया क्या है? आने जाने और रहने के स्थान पर मलमूत्र विसर्जन कर देना। जानते हैं कि यह रास्ता पशुओं के निकलने का है या व्यक्तियों ने यहां से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पगडंडी बिछाई है या कि उस पर चल करके चले जाते हैं, पगडंडी पर जो बनी हुई है उसी पगडंडी पर मलमूत्र इत्यादि क्षेपण करने के लिए अपन तैयार हो जावे तो यह जो क्रिया है वो समंतानुपात क्रिया कहलाती है। ऐसा अपन से बहुत बार हो जाता, अज्ञानता की वजह से जानकारी करके ही, और अपन को यहां तक लिखा मुनि महाराज को के तो अपने शरीर की विकृतियों का विसर्जन भी सावधानी से करो कि जिससे जीवों का घात ना हो जाए, आश्रव तो हो ही रहा है, तुम अशुभ के आश्रव से हो सके तो बचने की कोशिश करो, तभी बच पाएंगे। जब अपन सावधानी पूर्वक अपने शरीर की विकृतियों का भी विसर्जन करते समय सावधानी, यही समंतानुपात क्रिया है। अनाभोग क्रिया वो कहलाती के बिना देखी बिना सोधी जमीन पर बैठ गए, सामग्री रख दी, तो वो सब अनाभोग क्रिया कहलाएगी। पता नहीं वहां पर कौन सी जीव राशि थी, अपन ने उस सब का घात कर दिया, उसमें अपन निमित्त बन गए, तो आश्रय तो होगा ही। स्वहस्त क्रिया, दूसरे से करने योग क्रिया स्वयं कर ली। अब भैया जी हमारी अवस्था तक समझ में नहीं आई, इतने साल हो गए, बड़ी चर्चा हुई कि कौन कौन सी क्रिया अपने हाथ से करने वाली या कर ली अपन ने, हो जबकि वो दूसरे के करने की थी, बहुत विचार किया। सो इस पे तो आप स्वयं विचार कर लेना कि दूसरे के करने योग कार्य उस क्रिया को अपन ने स्वयं कर लिया। इस तरह का अगर भाव अपने भीतर है, किस वजह से आएगा, लोभ लालच से भी आ सकत के काय को अपने कर लो, पैसा काय को डारो है, ऐसा भाव भी आ सकता। वैसे तो अपने हाथ से क्रिया करने में सावधानी ज्यादा है, पर यहां पर भाव दूसरे को संक्लेश हो जाएगा, इस अपेक्षा से स्वयं क्रिया दूसरे के करने योग क्रिया कर लेना, यह स्वहस्त क्रिया कहलाती है। और निसर्ग क्रिया पाप के समर्थन करने वाली क्रिया, जिसमें कि पाप का समर्थन होता है, ऐसा मन वचन काय का उपयोग नहीं करना, बड़ा कठिन है इससे बचना। तो विधारण क्रिया, दूसरे के पाप को उजागर करने की क्रिया, जीवी है वो दूसरे के लिए आश्रय का कारण नहीं, अपने लिए आश्रय का कारण बनती है। दूसरा कोई गलत कार्य कर रहा है, अपन ने देख भी लिया तब भी नहीं कहेंगे, दूसरे के पाप कार्य को देख करके उसे उजागर करना, इससे भी अपने ही कर्मों का बंध होगा, आश्रय होगा, ऐसा जान करके ये विदारण क्रिया नहीं करना चाहिए। आज्ञा व्यापादनी क्रिया, शास्त्र के अनुसार तो क्रिया नहीं करी और अन्यथा उसका प्ररूपण कर लिया, लेकिन अब बाकी लोग तो टोक सकते हैं, तो धीरे से कहा कि देखो शास्त्र में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, सुन लियो, शास्त्र का और ठप्पा लगा लिया और जो कछु करने सो कर लिया। तो आचार्य महाराज कहते कि शास्त्रोक्त क्रिया का पालन न कर पाने की वजह से और अन्यथा प्ररूपण आपने कर दिया, जैसा था वैसा प्ररूपण करो, हम भले ही नहीं कर पा रहे हैं ये बात जुदी है, पर करनी तो चाहिए ऐसा ही यह कहना, इसमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन अगर हम जिनेंद्र भगवान के आज्ञा का उल्लंघन जानबूझ करके कर रहे हैं तो आज्ञा व्यापादनी ही क्रिया होगी। आप जे ने समझना कि हमने अन्यथा प्रवृत्ति करी सो आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, वो तो करो ही, और संगे जो कुछ भी अन्यथा किया उसको और जिनेंद्र भगवान ने कहा है ऐसा कह दिया सो डबल डबल काम होगा, दो पाप हो गए संगे, एक तो आपने अन्यथा किया सो आज्ञा का जैसा पालन नहीं किया, और फिर मैंने जो किया है वो ठीक किया ऐसा और कह दिया जिनेंद्र भगवान के नाम से, तो आपने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का दूसरी बार उल्लंघन कर दिया, ये आज्ञा व्यापादनी क्रिया में ही आएगा। और अनाकांक्षा क्रिया, शास्त्रोक्त जो क्रिया है उसका पालन अनादर भाव से करना, अब सामाय कन्ने है सो करेंगे थे, अब इन करेंगे बात लियो, कोई उत्साह नहीं धर्म की क्रियाओं करने में, कोई उत्साह नहीं, चले जाए वहीं तो, अभी तो ढाई बजे है, पौने तीन तीन तक चले जाए, आधे दो दो सुनाई दे अपन, ये क्या है, विचार करो, हम नहीं कह रहे आपसे कि ठीक ढाई बजे ही आओ, हम कहे क्यों कहें, हम तो अपना ढाई बजे आने का है, सो ढाई बजे हम शुरू कर देंगे, लेकिन अपन विचार करें कि अनाकांक्षा क्रिया शास्त्रोक्त जो क्रिया है उसको करना भी है, लेकिन उसके प्रति आदर भाव नहीं है, संसार के प्रति ज्यादा आदर भाव है, संसार के चार काम पहले निपटाएंगे, धर्म का काम बाद में, ऐसा अपने भीतर भाव अगर आता है, नहीं आवे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा भाव आ जाता है तो ये कर्मों का आश्रय ही इसके द्वारा भी होता। आरंभ की क्रिया पाप क्रिया स्वयं करना और दूसरे को करते देख करके और खुश होना है कि हाँ करो बहुत अच्छा कर रहे, खुद भी कर रहे और दूसरा कोई करे तो उस पाप कार्य को समर्थन भी करना, खुश होना मन ही मन, ये आरंभ क्रिया है। परिग्रही की क्रिया परिग्रह नष्ट ना हो इस प्रकार का प्रयत्न करना निरंतर परिग्रह के संवर्धन के लिए उत्सुक रहना कर्म के आश्रय में कारण है। बहुत कठिन है इन क्रियाओं को पढ़ करके। तो माया क्रिया ज्ञान दर्शन के विषय में छल कपट पूर्ण व्यवहार करना, जैसा ज्ञान दर्शन का स्वरूप है वैसा ना कह करके अन्यथा उसका प्ररूपण कर दिया, उसमें भी छल कपट का व्यवहार कर लिया, तो ये माया क्रिया कहलाएगी। और मिथ्या दर्शन क्रिया कहलाती है कि पहले तो आपने रागी द्वेषी जो वीतरा वो जो देवगुरु शास्त्र से उनको ही पूजा, सो अपने मिथ्यात् को बढ़ाया, लेकिन मिथ्या दर्शन क्रिया में तो मिथ्या दर्शन के जो पोषक पुरुष हैं उनकी भी प्रशंसा करना। अब बचो नहीं बहुत अच्छो है उनको भी बहुत अच्छो है ऐसा नहीं है। कई जने कहते भैया कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चाहे सोना बिछा दो तो भी काम को नहीं। ये अपने भीतर स्पष्ट होना चाहिए कि जैसे विनोबा ने लिखा कि धर्म तब तक शुरू नहीं होगा जीवन में जब तक कि आत्मा और देह के बीच में भेद विज्ञान नहीं हुआ, दोनों को एक ही मानते हो तो धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई। अपन अपने भीतर झांक के देखें कि अपन इसी का तो समर्थन करते हैं। कोई अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं है उसकी कुछ क्रियाएं बाहरी देख करके अपन उसकी प्रशंसा करने लगते, कछु नहीं अपन से तो अच्छे ही हैं। ये भैया अपन से अच्छे अकेले से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वो ही अच्छा माना जाएगा, जिसको सम्यक दर्शन है, जो सम्यक दर्शन के प्राप्त करने में लगा हुआ है और जो निरंतर मिथ्यात्व को ही पोषित कर रहा है, उसी मार्ग पर चल रहा है और उसकी हम प्रशंसा करें तो आपने मिथ्यात्व की ही प्रशंसा कर दी, आपके लिए तो आश्रय होगा ही, उससे आप बच नहीं सकते। और प्रत्याख्यान क्रिया त्याग के परिणाम सबको ऐसा लग रहा हूं ये जी नहीं पढ़ती तो अच्छी रहती, इनमें तो सभी फंस रहे हैं कोई नहीं बच रहा, हम एक एक सोचत की में बच जाए शायद जी ने करत हुई मनो भैया अपन 25 ही करत, बस इतना भर है कि अपने परिणाम कैसे हैं उस प्रकार से शुभ और अशुभ का आश्रय निरंतर होगा। आश्रय से तो संसार में कोई जीव मुक्त नहीं है, भगवान है अकेले जो कि आश्रय बंध से मुक्त हैं, अपन सब तो आश्रय और बंध से युक्त ही हैं। सो अपन को तो विचार इतने ही करना है कि अज्ञानता पूर्वक अगर मैं अशुभ का आश्रय कर रहा हूं तो मुझे सावधान हो करके और अशुभ के आश्रय से बचना है, इतना अपन कर सकते हैं। त्याग का भाव नहीं होना, क्या होता त्याग करने से, जबकि सामर्थ्य है कि त्याग कर सकते हैं लेकिन त्याग के प्रति आदर भाव नहीं है, दूसरे को त्याग करते देख करके उसकी हंसी उड़ाते और स्वयं भी त्याग भाव अपने भीतर नहीं आ पाता, ये अप्रत्याख्यान क्रिया कहलाती है। ये सब सांप्रायिक आश्रय के कारण बनते हैं। और तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वी विशेष व्यस्त विशेष, तीव्र भाव जैसे भाव होंगे वैसा ही आश्रम में घटबड़ी होगी। तीव्र भाव ज्ञात और अज्ञात भाव जैसा अधिकरण होगा वैसा और जिस प्रकार की सामर्थ होगी या वीर होगा उसके भेद से आश्रम में वैसी विशेषता आ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत तीव्र भाव से किसी कार्य को करे तो ज्यादा मात्रा में आश्रय होगा, कोई व्यक्ति जानबूझ करके अशुभ क्रियाएं करें तो ज्यादा आश्रय होगा। और अपन कह दिए कि देखो हमारे ऐसे भाव नहीं आते, हमारे शब्द ऐसे निकल गए कि आपको बुराई लग गई, लेकिन हमारा आपका बुरा चाहने का भाव नहीं था, अज्ञात भाव से संस्कार वश ऐसा हो गया, तो देखो उसमें कमती हो गया कि नहीं, आश्रय इतना ही तो है। लेकिन अपन तो जो कछु कह दे सो फिर जिद्द ही पकड़ ली उस बात की कि नहीं हमने तो जई कही थी वो भाई ये सही। ये भैया अपन कौन जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तुरंत जो है अपना भाव तो सिर्फ इतना है कि वस्तु स्वरूप अपन को मालूम पड़े और वस्तु स्वरूप जान करके सब जीव अपना कल्याण करें, उसमें जिद किस बात की कि नहीं वस्तु स्वरूप ऐसा ही है जैसा मैं कह रहा हूं, नहीं भाई, जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही है, मेरे कहने वेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो गलत भी कह सकता हूं, लेकिन भगवान ने जो कहा है सो एकदम स्वतंत्र सही कहा। ये अपने भीतर भाव होना चाहिए। आश्रय से बचने के लिए तो उपाय यही है, अधिकरण। जिस प्रकार का अधिकरण होगा, जिस प्रकार का आधार अपन बनाएंगे, जिस चीज को भी राग द्वेष में निमित्त बनाएंगे, उसके माध्यम से अपने को आश्रय होगा। और जैसी अपनी सामर्थ्य होगी, कोई लड़ने में बहुत पहलवान हो गए तो ज्यादा आश्रय होगा, और कमजोर आदमी कितना लड़ है बताओ, तो उसके दोष को कम आश्रय होगा। देखो, एक इंद्री जीव कितना पाप करें, वे पहले नरक से नीचे नहीं जा सकते। और मनुष्य जो वज्र सब नारा सहुनन को धारण कर रहे हैं, अगर वो खोटे परिणाम करे तो सात में नरक तक जा सकता है। ये तो अपने शक्ति पर और सामर्थ्य पर भी निर्भर है। इस तरह आचार्यों ने इन पांचों के बारे में, छह हो गए, पांच हुए, इन पांचों के द्वारा आश्रय में विशेषता आती है ये कह दिया। और अधिकरण के बारे में विशेष कहने के लिए कह रहे कि अधिकरणम जीवा जीवा। दो प्रकार के अधिकरण हैं, जीव और अजीव। जीव के माध्यम से भी अपन को आश्रय होता है, जीव भी अपने आश्रय में निमित्त बन सकता है, अजीव वस्तु भी अपने आश्रय में निमित्त बन सकती है। हैं, किसी व्यक्ति से अपना राग हो जाता, किसी व्यक्ति को देखते ही साथ और उसके प्रति जो अपना द्वेष भाव है वो जागृत हो जाता, और कोई चीज अपन को प्रिय मालूम पड़ती है, इष्टकर मालूम पड़ती है, और किसी चीज से अपन को घृणा हो जाती है, अनिष्टकारी मालूम पड़ती, ऐसे भाव निरंतर वस्तु को और व्यक्ति को देख करके अपने होते रहते हैं। सो यही उसमें आश्रय में आधार बन जाते हैं। इन्हीं के आधार से, इन्हीं के निमित्त से आश्रय शुभ और अशुभ का अपन को होता रहता है। जीव अधिकरण कितने प्रकार का है? 108 प्रकार का। आद्यम संभ्रम्भ समारंभ आरंभ योग कृत कारतानुमत कषाय विशेष त्रिस 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 चतुष्टयिक सह। संभ्रम्भ समारंभ और आरंभ, ये तीन चीजें हैं। कोई भी चीज अपन को करनी होती है तो अपन पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उस प्लानिंग के मुताबिक कौन कौन सा मटेरियल लगेगा उसको कलेक्ट करते हैं, और फिर जब मटेरियल अपने पास कलेक्ट हो जाता तो फिर एक्शन शुरू करते हैं। तो प्लानिंग, कलेक्शन और एक्शन, यही तो संभ्रम्भ समारंभ आरंभ है। खुद करते हैं, दूसरे से कराते हैं, कोई करे तो उसका समर्थन करते हैं, जी कृत कार्य अनुमोदना हो गई। और मन वचन काय उनमें तीनों प्रवृत्त रहते हैं, कोई ना कोई चार कषाय में से क्रोध मान माया लोभ में से एक भाव तो विद्यमान ही रहता है। सो ऐसे सब का गुणा करें तो 108 प्रकार से अपन को आश्रय के द्वार बन सकते हैं, ये सब निमित्त बन सकते हैं शुभ और अशुभ के आश्रय में, जैसा अपन बनाए वैसे। और निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वित्री भेदा परम। निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग, निर्वर्तना दो प्रकार की होती है। आचार्य भगवंतों ने रचना को ही निर्वर्तना कहा। अपन जो विभिन्न प्रकार की रचना करने का विचार करते हैं और साथ ही वैसी रचना कर लेते हैं जो कि पौद्गलिक है, उस रचना में भी अपने को आश्रय निरंतर होता रहता। किसी चीज को प्लेसिंग, रखना उठाना निक्षेप कहलाता है। इसके माध्यम से भी, वस्तु के माध्यम से अपन को शुभ अशुभ का आश्रय होता है। दो वस्तुओं को अपन मिला देते, खाने पीने की चीजें तो मिलाते ही हैं कि दाल के संगे रोटी खा लो, दूध के संगे भात खा लो, ये मिलाने की चीजें, एक ही संगे जो मिले हैं तो ज्यादा स्वादिष्ट लगे, ये भैया तो जो राग भाव होगा, और ये में ज्या चीज मिले हैं तो ज्या अच्छी नहीं, जो उन्होंने भाए अपन को जो उन्हें मिला में द्वेष भाव हो गया, ये राग द्वेष के परिणाम निरंतर होते रहते हैं, अपन उसमें आश्रय महाराज ये में जा मिला लो बहुत अच्छो लगे खाओ आप स्वाद, ये भैया आप राग उत्पन्न करना चाह रहे वस्तु के माध्यम से, वो निमित्त बन जाएगी वस्तु, राग भाव में उसके मिलाना भी निमित्त बन जाएगा। तो इस प्रकार अगर अपन संयोग करते हैं तो वह भी हमारे राग द्वेष परिणाम में निमित्त बनेगा और जो कि आश्रव के लिए कारण बनेगा। और प्रवर्तन करना, निसर्ग करना, या कि जो भी व्यवहार है, प्रवृत्ति है, वो सब भी आश्रव के लिए कारण बनती है। इस प्रकार से बहुत डिटेल में है इसका, तो भक्तपान का विशेष संयोग है और पात्र पिची कमंडली इत्यादि का भी संयोग करते हैं, और प्रवृत्ति अपन शरीर से भी करते हैं, वचन की प्रवृत्ति भी करते हैं, मन की प्रवृत्ति करते हैं, इन सबसे आश्रव निरंतर होता करने से होता है। ये अपन को विशेष रूप से इस अध्याय में समझने योग्य है। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योग। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी इन दोनों कर्मों के लिए निमित्त बनता है। कर्म के बंधन में प्रदोष, निहनव, मात्सरी, अंतराय, आसाधना और उपघात, ये सब इनसे ज्ञानावरणी कर्म और दर्शनावरणी कर्म के रूप में पुद्गल वर्गनाएं आश्रवित होती हैं। प्रदोष तो वो कहलाता है कि जो अच्छा ज्ञान है, तत्व चर्चा है, तत्व की बात कह रहे हैं, सो उस तत्व की बात को ठीक से नहीं सुनना, बल्कि उसके प्रति हर्ष का भाव न व्यक्त करके घृणा का भाव रखना। हर्ष का भाव भी व्यक्त नहीं करते हैं, उदासीन हो करके हम सुन रहे हैं तत्व की बात, तब भी ज्ञानावरणी का आश्रय होगा। और मन ही मन जो तत्व की बात कह रहा है, उसके प्रति अपने भाव कछु नहीं जानत के अरे वे तो ऐसा, अपने भीतर निंदा का भाव अगर है, तब भी ज्ञानावरणी कर्मा दर्शनावरणी के कर्म का आश्रय में ये निमित्त बनेगा, यही प्रदोष कहलाता है। और निहनव, निहनव तो खूब चलता है वर्तमान में। ज्ञान की चार बातें अगर कोई पूछे तो मालूम होते हुए भी नहीं बताना, नहीं तो हमसे ज्यादा ज्ञान सामने वाले को हो जाएगा, या कि पुस्तक होते हुए भी मेरे पास पुस्तक नहीं है ऐसा कहकर के छिपा लेना, तुमने जी कहां से सीखा इतना ज्ञान, हमने तो अपने मन से सीखा। सो गुरु का नाम भी और शास्त्र का नाम भी छिपा लिया। इस प्रकार अनेक प्रकार से अपन निहनव करते हैं, छिपा लेते हैं, सो इससे भी अपना ही ज्ञान ढकता है और दर्शनावरणी कर्म का भी आश्रय, दर्शन की क्षमता भी अपनी कम होती चली जाती है। मात्सरी, जानकारी होते हुए भी ईर्ष्यावश देने योग्य व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं देना, नहीं बताना, बता देने से तो दूसरा ज्यादा ज्ञानवान हो जाएगा, ऐसा ईर्ष्या का भाव है, सो तो मात्सरी हो गया। लेकिन जो छिपाने का भाव है वो निहनव है, दोनों में इतना अंतर रहेगा। छिपा रहे हो सो तो निहनव हो गया, और किस अपेक्षा से छिपा रहे, कौन से भावों से छिपा रहे हो, ये अलग बात हो गई। तो इसको मात्सरी के अंतर्गत आचार्य में रखा है, जिससे भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का आश्रय होगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा कमती ज्ञान है, लड़का पढ़त नहीं है, मन नहीं लगता है। हे भैया, ज्ञानावरणी का क्षयोपशम अपन को कर्मती है, तो क्षयोपशम अच्छा करना है अगर, तो ज्ञान को आश्रित करने वाले इन कारणों से बचना होगा। इन सब कारणों से ज्ञान का, ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है और ज्ञान ढकता चला जाता है, उसका क्षयोपशम कमती हो जाता है। अंतराय, ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के साधनों में बाधक बनना। कोई चित्त से पढ़ रहा हो सो जाकर के उससे गप्पा सक्का में लगा दे, क्या तुमने सुनी, अब वो पढ़ रहा हो शास्त्र और तुम लोग अपनी बात में लगा ला, ये क्या है, अपने ही ज्ञान को ढकना है। या कि चलो बंद बंद तो करो, अपन तनक बातें कर ली, अब किताब बंद कर दी, तो उसका जो ज्ञान प्राप्ति का साधन था उसका ही निषेध कर दिया। भैया ऐसे अपन अज्ञानतावश बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, पता ही नहीं लगता अपने को। आसाधना क्या कहलाती, दूसरे के द्वारा दी जाने वाली जानकारी को आदर न रखते हुए शरीर और वाणी से दोनों से निषेध करना, कोई बात जो कि ठीक है लेकिन अपने को ठीक नहीं जान पड़ती तो बाजू वाले को धीरे से धक्का मारो, कहीं सुनी क्या रहे भी तो। अब ले अपने ज्ञान का आपने ढकने का इंतजाम अपने आप कर लो, किसी व्यक्ति ने आपको कहा नहीं, या कि वाणी से ही कह दिया या कि शरीर से ही उसका निषेध कर दिया, तो ये सब आसाधना हो गई। अच्छे ज्ञान का भी आपने निषेध करके उसकी आसाधना कर दी, और ज्ञान का घात ही कर देना, उपघात, सही ज्ञान को भी दोष युक्त बता देना, गलत साबित कर देना, तर्क वितर्क में पड़ करके उसको मिथ्या ही सबके सामने कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सच है, आपने जो कहा है वो ठीक नहीं है, सो उसके ज्ञान का आपने नाश ही कर दिया जो तत्व ज्ञान था। तो उपघात करने से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दोनों का आश्रय होता है। भाई आसाधना में तो ज्ञान का अनादर है और उपघात में तो अपन ज्ञान को ही अज्ञान कह करके उसको नष्ट कर रहे हैं, इतना उपघात और आसाधना में अंतर है दोनों में। दुख शोक तावा क्रंदन बद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान अन्य सद्वेद्यस्य साता वेदनी कर्म का आश्रय नहीं, असाता वेदनी कर्म का आश्रय इन सब माध्यमों के द्वारा होता है, स्वयं में दूसरे में या कि स्वयं भी और दूसरे को, दोनों में ही जो दुख है शोक है ताप है आतप है सॉरी आक्रंदन है बद है और परिदेवन है, ये सब असाता वेदनी के आश्रयों में निमित्त बनते हैं, अपन करते रहते हैं। दुख का मतलब पीड़ा का अनुभव करना, कौन सी पीड़ा ये ध्यान रखना भाई, इसमें ये तो बाह्य कृत्य है, सो बाह्य कृत्य मुख्य नहीं है, आंतरिक जो संक्लेश परिणाम है वो मुख्य है। अगर संक्लेश परिणाम हो रहा है तो पीड़ा का संक्लेश परिणाम की वजह से अनुभव कर रहे हैं तो वो दुख कहलाएगा, और अगर प्रिय वस्तु या उपकारी वस्तु है उसका वियोग हो जाने से नष्ट हो जाने से खो जाने से अपन को जो निरंतर उदासी आ जाती है उसे शोक कहते हैं। और ताप कहलाता है कि किसी ने अगर झूठा आरोप लगा दिया तो मानसिक रूप से अत्यंत पीड़ित होता है, अपवाद लग जाने पर व्यथित हो जाता, संक्लेशित परिणाम हो जाते हैं, वो सब भी असाता के आश्रय में और कारण बनते हैं। एक तो असाता के कारण ही सब कुछ अच्छा होते हुए भी दूसरों के द्वारा बुरा कहा जा रहा है, और आपने उसको सुन करके और अधिक संक्लेश कर लिया सो आपके तो असाता वेदनी और अधिक आश्रित हो जाएगा, ये सावधानी की आवश्यकता है। आक्रंदन विलाप करते हुए जोर जोर से चीख चिल्ला करके रोना है, अपन जी करते हैं कू के बैठ भी गए सो अगर मोंगे मोंगे भी रो तो बाद में आन के गई कहले हम उनके गए थी सुबह तो उसे मुंह मुंह रोत रहे उन्हें जोर से रो ही नहीं है। बताओ अब बताओ आज मैंने आश्रय से बचना चाहे तो और आश्रय करवाएंगे अच्छे जोर जोर से रो तो बहुत दुख है उनको ऐसा अपन कहेंगे। ये सब अज्ञानता की वजह से निरंतर आश्रय अपना संसार में होता रहता, अपन बच नहीं पाते हैं इस सबसे। और बद प्राणों पर आघात से उत्पन्न हुई जो पीड़ा है उसे बद कहते हैं। प्राण तो घात नहीं किया लेकिन मार पीट इत्यादि कर दी तो उसके द्वारा जो अपन को पीड़ा होती है उसको बद कहते हैं, इंजोरी जिसको अपन कहते हैं। और परिवेदन यानी प्रिय के वियोग में उसके गुणों का स्मरण करते हुए ऐसे हते भी तो ऐसे हते रोज जा रहे संगे हैं, चार जने सुन रहे सो चार जनों को करना आ रही है, ये सब क्या चीज है आश्रय का, दुख का आश्रय होने वाला, असाता का आश्रय होने वाला। भैया जब उनकी अच्छे गुण हते तो उन अच्छे गुणों की जिंदगी भर प्रशंसा नहीं करी, अब मरे के बाद में उन अच्छे गुणों की प्रशंसा कर रहे हो, ये तो आपने ही असाता का उपाय कर रहे हैं। आप अपने हाथ से इसको पजो का बोलते हैं कि मरे के बाद में रू रहे पजो को कर रहे। बुंदेलखंड में तो यही माना जाता है। अब आप क्या कहते हैं उसको, परिवेदन कहलाता है। इसमें तो आचार्य भगवंतों ने उसी को परिवेदन कहा है। जो साधु जन तपस्या के दौरान पीड़ा का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके संकलेश पूर्वक वो पीड़ा नहीं होती, इसलिए वह असाता के आश्रम में कारण नहीं है। उन्होंने उसे शांत भाव से, समता भाव से उस पीड़ा को सहन कर लिया, तब वो पीड़ा होते हुए भी असाता में कारण नहीं बनेगी। पीड़ा के समय अपन जो हर्ष विषाद का परिणाम कर विषाद का परिणाम करते हैं, रोते चीखते चिल्लाते हैं, वह सब अपने असाता के आश्रम में कारण बनेगा। भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति सौचमिति सद्वेद्यस्य। प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा भाव, सब जीवों का कल्याण होवे इस तरह का भाव, व्रतिजनों के प्रति विशेष रूप से अनुकंपा का, सेवा का भाव, यहां पर सेवा का भाव लेना, नहीं तो व्रतिजनों पे आप दया करने लगे। हाँ हाँ भैया, व्रतिजनों की तो आपसे जितनी बन सके उतनी सेवा का भाव अपने भीतर आना चाहिए। दान इत्यादि देने से भी साता वेदनी का ही आश्रय होता है, और सराग संयम जो अपन देश व्रत इत्यादि पालन करने के लिए उत्सुक होते हैं, मेरे भीतर कषाएं और मिथ्यात मिटे, इसके लिए मैं व्रत नियम जो एक देशभक्ति के योग्य हैं वह धारण करता हूं, ऐसे जो परिणाम हैं वे सब परिणाम भी साता वेदनी के आश्रय में कारण बनते हैं। इन सब का उचित ध्यान रखना। और शांति, शांति का मतलब होता है किसी भी चीज को शांत भाव से सहन कर लेना, हमेशा शांत भाव रखना। जैसे अपन कहती कि भैया चार बातें भी उनसे कह लो, मनो कछु नहीं कहती, बिल्कुल गऊ आदमी है, है? जी क्या कहलाता जी? ये शांति परिणामों की विशुद्धि, कि आप चाहे जो कछु कहो, हमें अपने परिणाम खराब नहीं करना तो नहीं करना। आप गाली भी दोगे तो भी हमें परिणाम खराब ही नहीं करने। आप हमारा बटन थोड़ी हो कि आपने दबा और हमने गुस्सा कर लो, हम आपके अनुसार नहीं करेंगे। हमें करने हुई है तो करें, नहीं तो नहीं करने। आप गाली दो देते रहो, हमें गुस्सा करना नहीं करना हमारे ऊपर आधारित है। ऐसा शांति का भाव, यह भी साता वेदनी के आश्रय में कारण है। और शौच, जितनी निर्लोभ प्रवृत्ति होगी उतना ही साता का बंध होगा, और जितना साता का बंध होगा उतनी ही सुख सुविधा के साधन और अधिक मात्रा में बढ़ेंगे। सो अपन सोचते हैं कि लोभ कर लो और ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा के साधन जुटा दो, सो अच्छी सुख सुविधा मिल जाए। ये भैया, जितना निर्लोभ वृत्ति होगी उतना साता का बंध होगा, और जिससे कि और अधिक सुख सुविधा के साधन जुटेंगे। ये गणित अपन की समझ में नहीं आता, और अधिक लोभ करके अपन अपने सुख सुविधा के उपाय करते हैं, पापकारी में लग जाते हैं। आचार्य भगवंत कह रहे कि नहीं, अगर साता वेदनी का आश्रय करना है तो निर्लोभ वृत्ति, लोभ से रहित प्रवृत्ति अपनी होना चाहिए। और अकाम निर्जरा इत्यादि है, जो मजबूरी में अपन कई चीजें सहन कर लेते, कभी है ही नहीं या सो चलाओ काम है, ऐसा कर लेते मजबूरी में, तो मजबूरी में भी कर्मों की निर्जरा होती है, उससे भी साता का बंध होता है, है? और अज्ञानता पूर्वक जो तपस्या करते हैं उनको भी साता का बंध होता है। सो एक सम्यक दर्शन पूर्वक साता का बंध है जो सातिशय पुण्य कहलाता है, और मिथ्या दृष्टि भी अच्छे कार्य करके साता का बंध करता है। सो उससे सिर्फ भोग विलास की सामग्री मिल जाती, जिसमें और प्रवर्तित हो करके संसार बढ़ा लेता है। इसलिए अपन को ये बाल तप से साता बनती है ऐसा मान करके और बाल तप नहीं करना चाहिए। भैया ये तो अज्ञानता पूर्वक की जाने वाली तपस्या है, उसके द्वारा भले ही साता का बंध हो जावे लेकिन संसार ही अपना बढ़ेगा। और अनंत भगवान की पूजा अगर करते हैं, बाल वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, तपस्वी जनों की सेवा वैयावृत्ति करते हैं, ये सब सातिशय पुण्य के कारण है। इससे साता वेदनी का आश्रय होगा लेकिन संसार से मुक्त करने वाला यह आश्रय होगा, जो धीरे धीरे अपने को परंपरा से निर्वाण की प्राप्ति में भी कारण बनेगा। अनंत भगवान की पूजा हो, बाल और वृद्ध तपस्वी जनों की वैयावृत्ति इत्यादि हो। केवली सुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस। केवली भगवान, सुत ज्ञान, संघ धर्म और देव, ये सब महान चीजें हैं। सो पूज्या महान चीजों में, व्यक्तियों में जो दोष नहीं होते, उन दोषों की कल्पना कर लेना, ये सब अवर्णवाद कहलाता है। ऐसे अवर्णवाद के द्वारा तो मिथ्यात्व का ही आश्रय होता है, इससे बचना चाहिए। केवली भगवान कवलाहारी होते हैं, केवली भगवान को भी भूख प्यास की वेदना होती है, इस तरह का जो भाव है वह सब केवली भगवान की आसाधना है, उनका अवर्णवाद है, उनमें दोषों की कल्पना करना है। इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान के बारे में है कि शुद्ध ज्ञान तो वो है जो कि अहिंसा का प्ररूपण करे, लेकिन हिंसा को ही मोक्ष का मार्ग बताने लगे। मांस भक्षण इत्यादि करना यह भी धर्म है, यह भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा कह देना, ये सब शास्त्र उसका सुत का अवर्णवाद ही कहलाएगा। और संघ जो चतुर्विध संघ है, मुनि आरिका श्रावक शाबिका और या फिर मुनियों के जो चार भेद हैं, ऋषि मुनि यति और अनगार, इन चारों में जो दोष नहीं है उन दोषों की कल्पना कर लेना, ये भी अवर्णवाद कहलाएगा। सब निरंतर अपने आत्म शोधन में लगे हुए हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा भाव कर लेना कि अरे कायक हो, ये तो सब इनके पास कुछ है ही नहीं है, और बहुत स्नान भी नहीं करते, सो बहुत बिना नहाए धोए हैं, सो बड़े अशुद्ध रहते हैं, और इस प्रकार से बहुत सारी अपन को तो औरती नहीं है बातें कि कौन कौन सी करी जाता। आप तो जाना थे कि कौन कौन दोष लगा उन्हें, फिर लगा के रहते हैं अपन अवर्णवाद मिथ्या दुनिया भर की बात है, है? सो वो सब अवर्णवाद है। जो दोष नहीं है पूज्य पुरुषों में, उन दोषों की अपने मन से कल्पना कर लेना, ये सब संघ का अवर्णवाद मेरे मिथ्यात्व के आश्रय में कारण बनेगा। ऐसा भाव अगर आ जावे तो का करने, जो उनको जो कुछ करने सो करत रहो, हम अपनों काय को घाटो करें, वो तो अपना गलत करके अपना घाटा कर ही रहा है, हम उसके गलत को प्रचारित करके अपनों घाटों काय को करें, ऐसा विचार आता है सम्यक दृष्टि के मन में। अहिंसा तो धर्म है, श्रेष्ठ है, और वही जैन धर्म है, वीतरागता ही धर्म है, इसको नहीं मानना यही कहलाता है अहिंसा से पतित हो जाना, धर्म का अवर्णवाद। धर्म तो वीतराग है और अहिंसा है, लेकिन हिंसा को धर्म मान रहे, राग द्वेष इत्यादि को धर्म मान रहे, तो फिर धर्म का अवर्णवाद हो गया। और देवलोक जो कि स्वर्ग में रहते हैं, भवनवासी वेंतर इत्यादि भी हैं, वे सब भी अपने अपने भवनों में रहते हैं, वे तो वहां पर मांस भक्षण करते हैं, शराब मदिरा और सुरा का सेवन करते हैं, ऐसी कल्पना कर लेना, जबकि वो तो सर्वांग सुंदर होते हैं और जिनको इच्छा करते ही कंठ में से अमृत झर जाता है, उसी को वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसे उनके ऊपर इतने अच्छे होने के बाद भी उन पर दोष लगा दिए, ये देवों का अवर्णवाद है भैया, इसलिए इससे बचना चाहिए अपन को। कषायो दया तीव्र परिणाम आश्चारित्र मोहस्य। एक तो कषाय का उदय है ही, और उस कषाय के उदय से आत्मा के तीव्र परिणाम और कर लिए हैं, सो बहुत अधिक चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय अपन ने कर लिया। थोड़ी सी तो कोई ने गुस्सा दिलाने के लिए चार बातें कही थी, अपन ने अपनी तरफ से और पुरानी सब याद याद कर करके, हो तुम हमेशा हमसे जई है सही कहते रहे, तुमने जब भी कही थी हमसे, अब लड़ भी तैयार हो गए। अब ये क्या हुआ, ये आश्रय कर लिया चारित्र मोहिनी का, अपनी क्रोध कषाय को और निमित्त जुटा करके बना दिया। आया था क्रोध का उदय थोड़ा सा, लेकिन उसकी उदीरणा करवा ली, उसे तीव्र कर लिया, और तीव्र परिणाम होते ही चाहे क्रोध के हो, मान के हो, मायाचारी के हो, चाहे लोभ के हो, चारों कषाय में से किसी भी कषाय के उदय होने पर अल्प परिणाम अपने कलुषित हुए लेकिन उन्हें अपनी तरफ से और बढ़ा लेना, उन्हें तीव्र कर लेना, इससे तो चारित्र मोहिनी का ही आश्रय होता है। कष्ट ये हो गया। नौ कषाय भी इसी में आएंगे, नौ नौ कषाय, उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब उन सबको भी अपन चर्चा करें क्या, समय तो आपका ज्यादा हो जाएगा। बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकश्यायुषा, एक तो हमने कई बार कही कि इतने बिबे नैरा ने बना थे, लगा हुए थे सबरी मंदिर में, लगा हुए थे अपने घरे, लगवा लिए एक ठो बैनर, ऊपर लिखवाओ कि मैं बहुत आरंभ और परिग्रह करूंगा तो नरक जाऊंगा, लगवा लो उस रोज दुकान से, जब लोटी से पहले ऊपर देख लो कि कितना खुश हुए हम चार पैसा कमा के, मैं नरक जाने का इंतजाम कर रहा हूं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करूंगा, तो जो बोर्ड बनवा के नहीं लगाऊ, दुनिया भर के बोर्ड लगाएंगे पर मंदिर में ही, बारह भावना मंदिर में लगाएंगे, अरे अपने घरे लगा लो। इस प्रकार के सूत्रों का जो अर्थ है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से मेरे नरक आयु का ही आश्रय होगा, उसका ही बंद होगा, ऐसे विचार अगर अपने अंदर रहें तो अपन मूर्छा से और पाप कार्यों से बच सकते हैं। देखो धन पैसा होना तो कोई विशेष बात नहीं है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसके प्रति जो अपनी मूर्छा का भाव है, आसक्ति का भाव, वो तो कम ही रहना चाहिए। बहुत अधिक धन संपत्ति भी है पर भी उसके प्रति आसक्ति अगर कमती है तो परिग्रह थोड़ा ही कहलाएगा, बहुत अल्प परिग्रह है, बहुत परिग्रह नहीं कहलाएगा। इसी तरह पाप कार्य करना तो पड़ते हैं, लेकिन क्या करें, बेमन से उनको हम कर रहे हैं, जितना हो सके कम से कम में अपनो काम चल जावे, इस प्रकार पाप से भयभीत हैं अगर, तब तो अल्प आरंभ कहलाएगा, और बहुत सारा पाप कार्य विस्तार लिया तो बहुत आरंभ, उसके परिणाम से अपने को नरक आयु का ही बंद होगा, विचार करना चाहिए। माया तैरग्यु नस्य, मायाचारी तिरंचायु के आश्रयों में कारण है, जो अपन छल कपट करते हैं, कुटिलता का भाव रहता है, दुराव और छिपाव का भाव रहता है, वो सब मायाचारी है, तिरंचायु का आश्रय होता। अपन देखो देखते हैं, हैं? गाय चुपचाप खड़ी हुई है, अपन सोच रहे कछु ने कर है, और धीरे से उनने देखा कि इनका ध्यान दूसरी तरफ गांव है, सो सब्जी रखी हुई, फल रखे हो उनमें, एक मुंह मान लिया और चुपचाप एक तरफ चली गई। मायाचारी के परिणाम छूटे नहीं उसके, ऐसा ही अपन भी मायाचारी कर लेते हैं अपने कार्यों में, कि किसी तरह से कारी बन जावे, चाहे मायाचारी छल कपट करना पड़े, लेकिन ये विचार नहीं करते कि ऐसे भाव करने से अगर आयु बंद हुआ तो मेरे तो तिरंचायु का ही बंद हो जाएगा। अल्प आरंभ परिग्रह तुम मानुषस्य, बहुत अल्प आरंभ होवे और अल्प परिग्रह का भाव होवे तो उससे अपन को मनुष्य आयु प्राप्त होती है। अपन ने पहले कितना संतोष भाव रखा होगा जिसकी वजह से आज अपन मनुष्य आयु व्यतीत कर रहे हैं, विनम्रता का परिणाम होना, सज्जनता का परिणाम होना, सरल व्यवहार होना, स्वभाव मार्गोंचा, स्वभाव से ही मृदुता का भाव होना, ये सब मनुष्य आयु के आश्रय के कारण हैं। अपन को इस पे विचार करना चाहिए कि हमने पहले किस तरह के परिणाम किए जिससे कि ये मनुष्य पर्याय अपन को मिली, और अब क्या कर रहे हैं जिससे कि अपन को कौन सी पर्याय मिलेगी, स्वयं निर्धारित अपन को इस पढ़ करके अपन कर सकते हैं। निशील व्रतत्वम च सर्वेषां, जो शील से रहते हैं और व्रत इत्यादि से रहते हैं और अल्प आरंभ आदि का भाव है जिसके, उसके तो चारों प्रकार की आयुओं का आश्रय हो सकता है, सामान्य रूप से ये कथन किया गया है। पहले तो सब आयु के अलग अलग आश्रय बता दिए, फिर बाद में देवायु का आश्रय बता रहे हैं, बताने वाले हैं, पर चारों आयु सामान्य रूप से कैसे आश्रय के लिए कारण बनेंगी उनके आश्रय में, इसके लिए अलग से सूत्र कह दिया। देखो भोग भूमि में शील व्रत भी नहीं होते और व्रत भी नहीं होते अहिंसा इत्यादि, उनकी अपेक्षा से भी उनको भी देवायु का बंध हो जाता है, इस अपेक्षा से इस सूत्र को अलग से लिखना आवश्यक हो गया। सराग संयम संयमा संयम काम निर्जरा वाल तपांशी दैवस्य, जो राग पूर्वक अपन संयम का पालन करते हैं, देश व्रत धारण करते हैं और मजबूरी में कर्मों की निर्जरा करते हैं, अकाम निर्जरा और अज्ञानता पूर्वक जो तपस्या करते हैं, ये सब अच्छे परिणाम होने से देवायु के आश्रम में ही कारण बनते हैं। संयमी मुनि है, दसवें गुण स्थान तक राग भाव विद्यमान है, सो राग भाव के कारण ही छठे गुण स्थान तक देवायु का आश्रय हो जाता है। इस अपेक्षा से यहाँ सराग संयम भी आश्रय का कारण है और संयमा संयम में त्रस हिंसा का तो त्याग रहता ग्रस्त जीवों के, लेकिन स्थावर हिंसा तो वो उसके द्वारा बची नहीं पाता है। ऐसा भाव उसके थोड़ा संयम का थोड़ा असंयम का रहता है, विरत और अविरत, इसलिए उसको संयमा संयम या देश व्रत कहते हैं। और परवश होकर के भूख प्यास की बाधा सहेली, ब्रह्मचरी का पालन कर लिया, जमीन पर सो लिया, ये सब इनमें जो कर्मों की निर्जरा होती वो सब अकाम निर्जरा कहलाएगी। और आत्मज्ञान के विमुख होकर के मिथ्या दृष्टि के द्वारा जो पंचाग्नि तप इत्यादि किए जाते हैं, अग्नि में प्रवेश किया जाता है, वो सब तपस्या भी देवायु के लिए आश्रय में कारण बन जाती है। सम्यक्तम चा, सम्यक दर्शन है जो भी देवायु में कारण है। अब सम्यक दर्शन से देवायु का आश्रय होता हो ऐसा नहीं लगाना, सम्यक दर्शन के साथ जो राग भाव विद्यमान है वह देवायु के लिए आश्रय में कारण बनता है। सम्यक दर्शन किसी आयु के लिए आश्रय का कारण नहीं बनता भैया, लेकिन सम्यक तपचा लिख करके जो ऊंचे देव हैं उनका सम्यक दृष्टि तो वैमानिक देवों की आयु का ही आश्रय करेगा, ये दिखाने के लिए एक अलग से सूत्र लिख दिया। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामना, मन वचन काय की कुटिलता और विसंवाद, मेरा तेरा का जो भाव है कि जो हमावाय जो तुमावाय इसमें अपन पड़े रहते हैं, उससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां अपने शरीर की संरचना में कारण बनती हैं, सो उत्तम अच्छा शरीर मिलना शुभ नाम कर्म के आश्रय से संभव है। और अगर अपन अशुभ नाम कर्म का आश्रय करेंगे तो शरीर की रचना भी बड़ी विकृत हो जाएगी, डील डोल ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। किस वजह से? योग की वक्रता और विसंवाद करने से। योग की वक्रता समझते, कछु सोच रहे, कछु कह रहे, कर कछु और रहे, यही तो वक्रता है। सरलता क्या कहलाएगी? कि मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, वो कहलाएगी मन वचन काय की सरलता। लेकिन कुटिलता तो यही है कि मीठा तो बोल रहे अच्छे से, लेकिन मन में भीतर विचार कर रहे कि अच्छो फसो आदमी है और फिर इससे पैसा हड़प लूंगा, इस प्रकार के कुटिल मन वचन काय की क्रिया से तो नाम कर्म जो अशुभ है उसका ही आश्रय होगा। तद विपरीतम शुभस्य, अगर मन वचन काय की सरलता है और अविसंवाद है, लड़ाई में नहीं पड़ते हैं, विसंवाद नहीं करते हैं, तो अपन उस समय शुभ नाम कर्म का ही आश्रय करते हैं। हमेशा दूसरे व्यक्ति से सद्भाव रखना, चुगलखोरी नहीं करना, संसार से विरक्त होना, संसार में ज्यादा न रचना पचना, इससे भी शुभ नाम कर्म का ही आश्रय होता है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने कहा है। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेष्वन चारो वीक्षण ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर्वैया वृत्तिकरण महरदाचारी बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरस्तस्य। नाम कर्म में एक तीर्थंकर नाम कर्म है जो कि अत्यंत पुण्य प्रकृति है। 16 कारण भावनाएं केवली शुद्ध केवली के पादमूल में प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखते हुए सम्यक दर्शन के साथ जो भाता है उसे ही तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होता है। अपन को ये विचार करके अकेले सोलह कारण व्रत करना पर्याप्त नहीं है, सोलह कारण व्रत के साथ अपन को अपनी भावना भी इस प्रकार की होना चाहिए कि प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रहे, अपने अंदर सच्चे देव गुरु शास के प्रति श्रद्धा और रुचि रहे। और जब इन दोनों भावनाओं के साथ अपन सोलह कारण भावनाएं भाएंगे, तब जाकर के अपने जीवन में थोड़े से अच्छे संस्कार पढ़ेंगे। केवली शुद्ध केवली का पाद मूल जब तक नहीं है, जब तक आप कितने भी भावना भाव, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति बंध को प्राप्त नहीं होगी। अपन तो भाव भर कर सकते हैं कि जिससे अपने परिणाम अच्छे हों। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने चनी चैर गोत्रस्य, दूसरे की निंदा करना, अपने अपनी प्रशंसा करना, अच्छे गुणों को दूसरे के ढकना और दूसरे के असदगुणों का उद्भावन करना, सबसे कहते फिरना, ये सब नी